नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नार ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, राइजिंग अ सेंसरी स्मार्ट चाइल्ड। लिंडसी बील और नैन्सी पेस्के की व्यावहारिक मार्गदर्शिका है, जो बच्चों की संवेदी प्रसंस्करण संबंधी कठिनाइयों को समझने और उनका समर्थन करने पर केंद्रित है। संशोधित और अद्यतन संस्करण में लेखिकाएं बताती हैं कि ध्वनि, स्पर्श, गंध, स्वाद, दृश्य संकेत और गति जैसे अनुभव कुछ बच्चों के लिए सामान्य नहीं होते, बल्कि अत्यधिक परेशान करने वाले या असामान्य रूप से आकर्षक हो सकते हैं। पुस्तक का उद्देश्य किसी व्यवहार को जिद, अनुशासनहीनता या खराब पालन पोषण मान लेने के बजाय उसके पीछे मौजूद संवेदी कारणों को देखने में मदद करना है। एक लेखिका बाल व्यावसायिक चिकित्सक है और दूसरी संवेदी चुनौतियों वाले बच्चे की अभिभावक, इसलिए पुस्तक में पेशेवर समझ और पारिवारिक अनुभव दोनों मिलते हैं। यह निदान का विकल्प नहीं है, बल्कि अवलोकन, रोजमर्रा के अनुकूलन, उपयुक्त विशेषज्ञ सहायता और स्कूल में वकालत के लिए विस्तृत हस्त पुस्तिका है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, व्यवहार के पीछे संवेदी अनुभव को पहचानने का दृष्टिकोण। पुस्तक का मूल विचार यह है कि कई उलझाने वाले व्यवहारों को केवल इच्छाशक्ति या अनुशासन के प्रश्न की तरह नहीं देखना चाहिए। कोई बच्चा कान ढकता है, कपड़ों के टैग से परेशान होता है, बाल धोने से बचता है, लगातार टकराता या कूदता है, अथवा खाने की बनावट पर तीखी प्रतिक्रिया देता है, तो उसके अनुभव का स्रोत संवेदी हो सकता है। बील और पेस्के संवेदी प्रसंस्करण को उस प्रक्रिया के रूप में समझाती हैं, जिसमें मस्तिष्क इंद्रियों से आए संकेतों को दर्ज करता, नियंत्रित करता और उनके अर्थ के अनुसार प्रतिक्रिया संगठित करता है। जब यह प्रक्रिया असंगत हो तो बच्चा कुछ संकेतों से बच सकता है या अधिक तीव्र संकेत खोज सकता है। पुस्तक देखने, सुनने, छूने, स्वाद और गंध के साथ शरीर की स्थिति तथा संतुलन और गति से जुड़ी संवेदनाओं पर भी ध्यान दिलाती है। इसका व्यावहारिक महत्व बड़ा है, क्योंकि एक ही व्यवहार के अलग कारण हो सकते हैं। शोर से भागना चिंता नहीं, ध्वनि के प्रति अति संवेदनशीलता भी हो सकता है। लगातार हिलना अवज्ञा नहीं, शरीर को व्यवस्थित रखने की जरूरत हो सकती है। लेखिकाएं अभिभावकों को पैटर्न, परिस्थिति, समय और बच्चे की प्रतिक्रिया देखने के लिए प्रेरित करती हैं। यह अवलोकन किसी लेबल को थोपने के बजाय बच्चे के अनुभव और सहायता की जरूरत को अधिक सटीक ढंग से समझने का आधार बनता है। दूसरा, व्यक्तिगत संवेदी प्रोफाइल और संवेदी आहार की योजना। पुस्तक का सबसे उपयोगी उपकरण संवेदी आहार की अवधारणा है। इसका अर्थ भोजन संबंधी योजना नहीं, बल्कि दिन भर ऐसी गतिविधियों और पर्यावरणीय सहायताओं का व्यक्तिगत क्रम है जो बच्चे को अपने शरीर और ध्यान को व्यवस्थित रखने में सहायता दे। लेखिकाएं इस बात पर जोर देती हैं कि कोई एक गतिविधि हर बच्चे के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। जिस बच्चे को गहरी दबाव वाली गतिविधियां या सक्रिय खेल शांत कर सकते हैं, उसे किसी दूसरे बच्चे के लिए असुविधाजनक या अत्यधिक उत्तेजक माना जा सकता है। इसलिए शुरुआत बच्चे की संवेदी प्रोफाइल से होती है, यानी वह किन संकेतों को खोजता है, किन से बचता है और किन परिस्थितियों में उसका संतुलन बिगड़ता है। फिर दिनचर्या में छोटे उद्देश्यपूर्ण बदलाव जोड़े जाते हैं, जैसे कठिन बदलावों से पहले शरीर को सक्रिय करने का अवसर, शोर वाले स्थान पर ध्वनि घटाने की व्यवस्था या लंबे बैठने के बीच गति का विराम। पुस्तक संवेदी आहार को कठोर नुस्खा नहीं मानती, बच्चे की उम्र, स्कूल की मांग, नींद, तनाव और परिवेश बदलने पर योजना भी बदलनी चाहिए। इस दृष्टि की शक्ति यह है कि यह समस्या आने के बाद दंड या संकट प्रबंधन पर निर्भर नहीं रहती। यह पहले से नियोजित समर्थन द्वारा बच्चे की भागीदारी, सीखने और पारिवारिक दिनचर्या को अधिक संभव बनाने का प्रयास करती है। तीसरा, कपड़े, भोजन, स्वच्छता और नींद जैसी दैनिक चुनौतियों के ठोस समाधान। यह पुस्तक सिद्धांत को घर की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़ती है। दांत साफ करना, बाल धोना, नहाना, कपड़े पहनना, जूते और मोजे चुनना, भोजन करना, सोना या पारिवारिक समारोह में जाना, ये सभी काम संवेदी कठिनाई वाले बच्चे के लिए कई संकेतों का एक साथ दबाव बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, कपड़े पहनने में बनावट, सीम, तापमान और शरीर पर स्पर्श शामिल है। खाने में स्वाद के अतिरिक्त गंध, रंग, चबाने की ध्वनि और मुंह में महसूस होने वाली बनावट प्रभाव डालती है। इसलिए पुस्तक का रुख बच्चे को जबरन आदत डालने के बजाय बाधा को अलग अलग घटकों में समझने का है। अभिभावक यह देख सकते हैं कि समस्या कार्य में है या उसकी किसी विशेष संवेदी विशेषता में। फिर विकल्प, पूर्व तैयारी, क्रमिक परिचय, अधिक पूर्वानुमेय दिनचर्या या वातावरण में बदलाव आजमाए जा सकते हैं। यह भेद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर खाने से इनकार को नखरा और हर नहाने के विरोध को अनुशासन की कमी मानने से संघर्ष बढ़ सकता है। लेखिकाएं साथ ही ये संकेत देती हैं कि दैनिक कार्यों पर गंभीर असर पड़ने पर विशेषज्ञ मूल्यांकन उपयोगी है। पुस्तक घर के उपायों को पेशेवर सहायता का प्रतिस्थापन नहीं बनाती, बल्कि परिवार और चिकित्सक के बीच संवाद को अधिक जानकारीपूर्ण बनाने वाला माध्यम मानती है। चौथा, ऑटिज्म ध्यान और विकासात्मक कठिनाइयों के साथ संवेदी जरूरतों का संबंध। बिल और पेस्के स्पष्ट करती हैं कि संवेदी प्रसंस्करण संबंधी चुनौतियां अलग अलग प्रकार के बच्चों में दिख सकती हैं। वे ऑटिज्म ध्यान संबंधी कठिनाइयों, सीखने की समस्याओं या विकासात्मक विलंब वाले बच्चों में उपस्थित हो सकती हैं, लेकिन केवल इन्हीं स्थितियों तक सीमित नहीं है। यह अंतर पुस्तक की जिम्मेदार विशेषता है, क्योंकि वह संवेदी संकेतों को किसी एक व्यापक निदान का निर्णायक प्रमाण नहीं बताती। इसके बजाय वह कार्यात्मक प्रश्न उठाती है, क्या संवेदी अनुभव बच्चे के खेल, मित्रता, आत्म देखभाल, सीखने, नींद या परिवार की दिनचर्या में बाधा बन रहा है। जब बच्चा अपने शरीर में हो रही असुविधा या उत्तेजना को संभालने में व्यस्त होता है, तो ध्यान, भावनात्मक नियंत्रण और कक्षा में भागीदारी प्रभावित हो सकती है। इससे बाहरी रूप में बेचैनी, चिड़चिड़ापन, टालना या व्यवहार संबंधी समस्या दिखाई दे सकती है। पुस्तक ऐसे व्यवहार को संवेदी कारण मान लेने की जल्दबाजी से भी बचाती है, क्योंकि एक ही लक्षण के पीछे अनेक कारण संभव हैं। यही कारण है कि लेखिकाएं योग्य व्यावसायिक चिकित्सक और अन्य उपयुक्त स्वास्थ्य या विकास विशेषज्ञों से सहायता लेने पर जोर देती हैं। पुस्तक का योगदान निदान करना नहीं, बल्कि परिवार को बेहतर अवलोकन, सही प्रश्न और बहुआयामी समर्थन की भाषा देना है। अंत में स्कूल में अनुकूलन, अभिभावक वकालत और बच्चे की आत्मपक्षधरता पुस्तक घर तक सीमित नहीं रहती, क्योंकि संवेदी कठिनाइयां अक्सर स्कूल, यात्रा, खेल, सामाजिक कार्यक्रमों और समुदाय में अधिक स्पष्ट होती हैं। कक्षा में घंटी, भीड़, कुर्सी पर लंबे समय बैठना, दृश्य व्यवस्था, भोजनालय का शोर या अप्रत्याशित बदलाव बच्चे की सीखने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। लेखिकाएं स्कूल को संवेदी रूप से समझदार बनाने की बात करती हैं। इसका आशय हर बच्चे के लिए एक जैसा समाधान लागू करना नहीं, बल्कि बच्चे की जरूरत के अनुरूप व्यावहारिक अनुकूलन पर शिक्षक, परिवार और विशेषज्ञ के बीच सहयोग बनाना है। संभव उपायों में शांत स्थान, नियोजित शरीर विराम, निर्देशों की बेहतर संरचना, बैठने की व्यवस्था या संवेदनशील गतिविधियों के लिए विकल्प शामिल हो सकते हैं। पुस्तक अभिभावकों को अपने बच्चे के व्यवहार के पैटर्न, काम आने वाली रणनीतियों और कठिन परिस्थितियों का स्पष्ट रिकॉर्ड रखने के लिए प्रेरित करती है। इससे बातचीत भावनात्मक संघर्ष के बजाय ठोस जरूरतों पर केंद्रित हो सकती है। एक महत्वपूर्ण विस्तार किशोरों और बड़े बच्चों को अपनी जरूरत पहचानने और उचित सहायता मांगने में सक्षम बनाना है। दीर्घकाल में लक्ष्य केवल वयस्कों द्वारा व्यवस्था करना नहीं, बल्कि बच्चे में आत्म जागरूकता, संवाद और परिस्थितियों के अनुसार अपनी संवेदी जरूरत संभालने की क्षमता विकसित करना है। निष्कर्ष में, राइजिंग अ सेंसरी स्मार्ट चाइल्ड उन अभिभावकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिनके बच्चे की रोजमर्रा की प्रतिक्रियाएं समझ में नहीं आ रही हैं, जैसे शोर से घबराना, कुछ कपड़े या भोजन अस्वीकार करना, लगातार गति की जरूरत या स्वच्छता और नींद से जुड़े संघर्ष। शिक्षक, विशेष शिक्षण कर्मचारी और बच्चों के साथ काम करने वाले पेशेवर भी इससे लाभ ले सकते हैं, क्योंकि पुस्तक व्यवहार को उसके संदर्भ और संभावित संवेदी कारणों के साथ देखने की व्यावहारिक भाषा देती है। इसकी उपयोगिता किसी त्वरित सार्वभौमिक समाधान में नहीं, बल्कि व्यक्तिगत अंतर को गंभीरता से लेने में है। यह पाठक को बच्चे की संवेदी प्रोफाइल देखने, दैनिक जीवन में छोटे अनुकूलन करने, विशेषज्ञ सहायता खोजने और स्कूल के साथ ठोस सहयोग बनाने की दिशा देती है। समान विषय की कई पुस्तकों की तुलना में इसका अलगपन व्यापकता और उपयोग केंद्रित संगठन में है। यह इंद्रियों की बुनियादी व्याख्या, घरेलू दिनचर्या, स्कूल, सामाजिक जीवन, उम्र के साथ बदलती जरूरतों और वकालत को एक ही ढांचे में रखती है। साथ ही व्यावसायिक चिकित्सकीय अनुभव और अभिभावक दृष्टिकोण का संयोजन इसे न तो केवल चिकित्सकीय संदर्भ ग्रंथ बनाता है, न केवल निजी अनुभव का विवरण। पाठक को यह याद रखना चाहिए कि पुस्तक पेशेवर आकलन का विकल्प नहीं है। फिर भी सही प्रश्न पूछने, बच्चे को दोष देने के बजाय उसकी कठिनाई समझने और समर्थन को अधिक सटीक बनाने के लिए यह अपने क्षेत्र की एक मजबूत और व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं लिंजी बियल, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।